ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी महान भाग्यशाली हो कि आज प्रथम दिन ही आप सबको आदरणीय दादी जानकी जी द्वारा मुरली सुनने का सौभाग्य मिला और प्रथम दिन बट्टी का कि जिसके अंदर जो प्रथम मुख्य बात है ज्ञान का फाउंडेशन है देही अभिमानी स्थिति। बाबा की रोज की साकार मुरली में कई बार ये बात आती है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अलग है, क्या कहेंगे? एक ही है। जो कहते एक ही है जरा हाथ खड़ा करें। देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही बात है। अच्छा, जो कहते हैं अलग अलग है, सही बात है कि दोनों का प्रयोग जब बाबा ने किया है मुरली के अंदर और जब ध्यान से सुनते हैं मुरली तो महसूस होता है कि कब बाबा ने आत्म अभिमानी कहा और कब बाबा ने देही अभिमानी कहा। अच्छा, जो कहते हैं कि अलग अलग है तो आत्म अभिमानी कब बनना चाहिए, देही अभिमानी कब बनना चाहिए? कोई भी उठ करके सुनाए। हाँ जी, जोर से बोलेंगे, कुमारियों का आवाज थोड़ा ढीला होता है। आत्मिक स्थिति में रहना माना आत्म अभिमानी बनना। हाँ, देही अभिमानी मतलब अच्छा, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके जब हम कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं देही अभिमानी। बहुत अच्छी बात। और भी कोई स्पष्ट कर सकता है? हाँ जी, खड़े हो जाओ। देही अभिमानी माना बाबा की याद में रहकर कर्म करना, आत्म अभिमानी माना सात गुणों का स्वरूप बनना। हाँ जी, और किसी के पास कोई डेफिनेशन है? बोलो। आत्म अभिमानी मतलब जब बाबा की मुरली सुनते हैं उस समय जो स्थिति होती है वो आत्म अभिमानी, और देही अभिमानी मतलब जब कर्म करते हैं तो कर्म करते समय देही अभिमानी कैसे बन जाते हैं। ठीक है, इस बात को अभी स्पष्ट करते हैं। वैसे काफी अच्छी तरह से जिन्होंने भी बताया, अच्छा अभ्यास किया हुआ होगा तभी बताया। लेकिन कोई भी बात जब थियोरेटिकली क्लियर हो जाती है तो फिर उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने में भी आसान हो जाता है। और इसीलिए ये तीन शब्द है, एक है आत्म अभिमानी, एक है देही अभिमानी और तीसरा है देह अभिमान। तीन शब्द है। आत्म अभिमानी कब बनना है, देही अभिमानी कब बनना है और देह अभिमान किसको कहते हैं। आत्म अभिमानी अर्थात कि जब हम योग में बैठते हैं तो उस समय ये देह को भी भूल जाते हैं या देह की विस्मृति हो जाना और अपने आप को आत्मा समझ करके बैठना, आत्मा को विजुलाइज करना, उसको कहते हैं आत्म अभिमानी। देही अभिमानी का मतलब है कि जब हम कर्म में आते हैं तो उस समय हम देह की कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, लेकिन देही अभिमानी अर्थात कि देह की इंद्रियों का प्रयोग करना मालिक बन करके है। जब मालिक बन करके अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, कराने वाली मैं आत्मा हूं लेकिन देह की मालिक हूं, कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, तो उसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह अभिमान किसको कहते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई को मालूम है कि देह अभिमान किसको कहते हैं। किसको कहते हैं देह अभिमान में भी तीन स्टेज है, एक है देह अहंकार, एक है देह अभिमान और एक है देह भान। ये तीनों में कोई अंतर है, क्या अंतर है कोई स्पष्ट करे। अपने को उसको दे अभिमान कहते हैं। अगर अपने कोई प्रोफेशनल स्टेटस है, उस प्रोफेशनल स्टेटस के भान में रह करके चलते हैं, उसको दे अभिमान कहते हैं। अच्छा, दे भान किसको कहते हैं और देह अहंकार किसको कहते हैं। मैं स्पष्ट कर देती हूं, आवाज पहुंचेगा नहीं नहीं तो। देह अहंकार सबसे खराब माना गया है कि जब पांचों विकार चरम उत्कृष्ट स्थिति पर है, बहुत हाईएस्ट लेवल पर है कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ समझता है और दूसरे को तुच्छ समझता है, कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, उसमें क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है, कोई कुछ कहता है उसमें सहन करने की शक्ति नहीं होती है, उसको हर छोटी बात में भी ये फील होता कि मुझे हर्ट कर रहे हैं आप, मुझे हर्ट कर रहे हैं। ये फीलिंग जहां है उसको देह अहंकार। हर विकार बहुत अधिक मात्रा में है, उसको कहते हैं देह अहंकार। काम भले काम विकार के रूप में न हो लेकिन कामनाएं, तृष्णाएं, ये चाहिए चाहिए चाहिए, और जब अपने पास वो चीज होती है तो उसका घमंड दिखाना दूसरों के सामने, दूसरों को नीचा दिखाना, है ना, उसको कहते हैं देह अहंकार। अच्छा, देह अभिमान किसको कहते हैं? देह अभिमान थोड़ा कम होता है उससे, जहां बड़े बड़े विकारों का अंश, जिसको कहा ईर्ष्या, द्वेष, ये छोटे छोटे विकार के वश हो जाना, उसका स्वरूप होना, दूसरा अगर अपने आप को समझता है कुछ तो सोचते हैं ठीक है वो समझता है, मैं भी कम थोड़ी हूं, ये अभिमान है ना, अपने आप में ये प्रोजेक्ट करना कि उससे तो मेरे अंदर कम है, भले है लेकिन उससे तो कम है, उसके जैसे तो नहीं हूं मैं, जो दूसरों को तुच्छ समझूं, ये अभिमान है। जहां विकारों की मात्रा कम होती है और छोटे विकारों की मात्रा ज्यादा होती है, ईर्ष्या की, द्वेष की, किसी की निंदा की, ग्लानि की, ये सारे अभिमान में आ जाते हैं। जहां हम अपने आप को समझते हैं और मैं दूसरों से अच्छा हूं, पहले में आता है मैं ही हूं, मेरे लेवल में कोई नहीं, दूसरे में अभिमान में मैं अच्छा हूं, भले मैं इतना न भी हूं लेकिन मैं अच्छा हूं, ये फीलिंग आना। और देह भान सूक्ष्म होता है थोड़ा, लेकिन देह भान माना हर वक्त व्यक्ति जब देह के भान में रहता है, कहीं ये खा लिया वजन बढ़ गया, ये कॉन्शियसनेस, या मेरा वजन बढ़ गया, मेरे फिगर ठीक नहीं रह गए, लोग कैसे देखेंगे, ये भान है। जहां हर वक्त ये बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, इस देह को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मैंने ज्यादा खा लिया, कुमारियों में ज्यादातर देह भान होता है, अपने फिगर को लेकर के, अपने चेहरे को लेकर के, अपने सब उसको ले, तो ये जहां भान आया कि ये खाने से ये हो जाएगा, कहीं ये खा लिया इसलिए ऐसा हो गया, ये खा तो इसे तो नहीं खाना अच्छा है ना, ताकि अपने फिगर को, अपने बाहर के जो व्यक्तित्व है उसको कोई भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी कोई विकार नहीं है, गुस्सा भी नहीं होगा, कोई क्रोध बड़ा नहीं होगा, कोई ज्यादा मैं बहुत अच्छा हूं ये भी फीलिंग नहीं होगी, लेकिन मेरी बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। जहां बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन देना, इसको कहते हैं देह भान। तो देह अहंकार तो छूट गया बाबा के बनने के बाद, देह अहंकार हम सबका छूट जाता है, लेकिन ये अभिमान आ जाता है। जहां महिमा सुनने की एक आदत होती है या अच्छा लगता है कोई, अगर महिमा, वो अभिमान को पोषने वाली बात है। और देह भान माना अपनी बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना, है ना, और बहुत ज्यादा जब कॉन्शियस हो जाते हैं, कहीं ये खा लिया, ऐसा हो गया, धूप में चले गए, सेवा करने गए और धूप बहुत लगी, तो भाई मेरा रंग फीका, ये देह भान है, ये देह भान है, है ना। तो देह भान अभी तक है, देह अभिमान भी कम हो जाता है, लेकिन देह भान अभी तक है, ये अंतर है। लेकिन जैसे ही हम किसी को बहुत जल्दी कमेंट पास कर देते हैं, ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, कैसे पता चला आपको कि ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है? किसी के लिए हम तुरंत कमेंट पास कर देते हैं, ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, कैसे पता चला आपको? उसने कुछ बात भी नहीं किया फिर भी आप कह देते हैं देखा कितना अभिमानी, कैसे पता चला? उसने कुछ बोला भी नहीं है, कुछ आपके साथ ऐसा व्यवहार किया भी नहीं है, तो क्या कहते हैं, उसके भाव भाव से पता चल जाता है। हाव भाव में ऐसा क्या था? तो हाव भाव के अंदर वो अपने आप को कुछ समझ रहा है, ये महसूस हुआ, ये वाइब्रेशन फील हुआ। तो वाइब्रेशंस आते हैं और ये फील होता है। सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कुछ बोले तो ही हमें मालूम पड़े, नहीं बोलने पर भी वो वाइब्रेशन आता है, जहाँ ये फीलिंग आ जाती है कि ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है, देह अभिमानी है, कि जहाँ वो आपसे बात करना नहीं चाहता है, तो कहते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, देखो बात भी नहीं करता, कितना अभिमानी है। तो वहां आपको ये वाइब्रेशन आए कि दूसरों को ये नीचा समझता है, अपने आप को कुछ ज्यादा समझता है, या किसी ने बात किया तो दूसरे के बारे में जब वो निंदा करता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, तो कहेंगे पता नहीं अपने आप को क्या समझ, दूसरे कोई अच्छे है ही नहीं, वही अच्छा है, अभिमानी है। तो जहां कोई भी व्यक्ति निंदा, ग्लानी या किसी का परचिंतन, तो उसी से पता चलता है वो अपने आप को कुछ समझ रहा है, दूसरे को नहीं समझ रहा है, या दूसरे को कम समझ रहा है, इसीलिए हमने कमेंट पास कर दी कि अभिमानी है। या किसी ने उसको कह दिया तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, फीलिंग आ जाती, अपसेट हो जाता है, तो कहते पता नहीं उसको इतना दे अभिमान है कि उस सेंसिटिव है, कुछ कह नहीं सकते हैं उसको। तो ये देह अभिमानी, तो देही अभिमानी या आत्म अभिमानी क्या है? तो आत्म अभिमानी जब हम कहते हैं, तो जब हम योग में बैठते हैं तो उस वक्त हमने अपने कर्मेंद्रिय को भी समेट लिया, हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भी समेट लिया, और उस वक्त जब ब्रुकुटी के मध्य में मैं अंतर चक्षु से खाली आत्मा को विजुअलाइज करती हूं, और आत्मा को विजुअलाइज नहीं लेकिन अभिमानी, आत्म अभिमानी माना आत्मा समझने के साथ आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनते जाना, कि मैं जब कहती हूं कि आत्मा शांत स्वरूप है, तो उस शांति को फील करना, महसूस करना। कमेंट्री में हम क्या करते हैं, कमेंट्री हमें मिलती है, वो कमेंट्री खाली अंदर में शायद हम रिपीट कर लेते लेकिन उसको फील नहीं कर पाते। इसीलिए जब आत्मा अभिमानी होकर के बैठना, माना बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करना और मन के द्वारा फील करना। मन के दो कार्य है, एक है संकल्प करना, दूसरा है महसूस करना, फील करना। और इसीलिए जब कहते हैं विजुअलाइज करते हुए फील करना, जब ये कहते हैं तब उसको हम महसूस करें अपने अंदर से, जैसे वो शांति, शक्ति, आनंद की स्थिति के अंदर स्थित, वो आत्मा के सातों गुणों को महसूस करते जाना। उसका एक प्रत्यक्ष, क्योंकि बुद्धि का कार्य है देखना, बुद्धि के पास है विजुअलाइजेशन एबिलिटी, निर्णय तो बाद में लेता है, एक बहुत नॉमिनल कार्य है बुद्धि का, लेकिन बुद्धि का सबसे बड़ा काम है देखना। जैसे ये आंखों से हम देखते हैं, ऐसे बुद्धि के नेत्र से भी हम देखते हैं। लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि कहीं उसको कल्पना करना तो नहीं कहा जाता है, नहीं, कल्पना नहीं, कल्पना और विजुअलाइजेशन में क्या अंतर है? कल्पना माना जो चीज है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही न हो, और उसके विषय में सोचना, उसको कहते हैं कल्पना। लेकिन विजुअलाइजेशन माना जिसका अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा के सातों गुणों का अस्तित्व है, और उसके विषय में आप सोचते हैं या देखते हैं, तो उसको कहते हैं विजुअलाइज करना, राइट? उसको सिंपल और मैं एग्जांपल देते हुए कहती हूं, सब डायरी पेन अभी छोड़ दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एकदम अच्छी तरह से बैठो, फर्स्ट क्लास। अच्छा, आंखें बंद कर लो, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं हम। आंखें बंद करो, कोई भी लिखेगा नहीं, नहीं तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना? लिखने जाएंगे तो आपको जो महसूस कराना चाहती हूं मैं, वो नहीं कर पाएंगे। सिंपल एक स्थूल बात को लेकर के हम चलते हैं। आंखें बंद करो। अब जैसे ही आंखें बंद करो, आपके राइट हैंड साइड पर आप देखो एक लींबू है, एक लींबू है। उस लींबू को आप उठाते हो, आपके पास एक चाकू है, उस लींबू को आपने काटा, आधा काटा। अब उस चाकू को रख दो और वो लींबू को, आधा काटा हुआ, उसको आप नाक के पास लाओ, खटाई की फीलिंग आती है। उस लींबू के ड्रॉप्स को आप अपने मुख में डायरेक्ट निचोड़ते हो और नींबू का रस डायरेक्ट पी रहे हो। बहुत खट्टी टेस्ट आ रही है। ओके, ओम शांति। लींबू दिखाई दिया, काटा, मुंह में गया, वो रस, खटाई महसूस हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? खाली बस जिसको नहीं हुई वो जैसे थियोरेटिकल में जा रहे थे, लेकिन फील करना, बुद्धि ने उस लींबू को देखा, काटा भी आपने, और उसके ड्रॉप्स जब फील करने के लिए कहते हैं, तो ठीक इसी तरह उसकी फीलिंग आनी चाहिए, वो है फील करना। अगर फील नहीं हुआ, माना एक थियोरेटिकल प्रोसेस था। योग में भी अगर आप फील नहीं करते हैं तो एक थियोरेटिकल प्रोसेस है। इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं योग में हमें अनुभव नहीं होता है, क्योंकि थियोरेटिकली वो कमेंट्री चला भी रहे हैं, लेकिन जो फील करने का प्रोसेस होता है वो नहीं कर पा रहा है मन। तो फील करते हैं, महसूस करते मन के द्वारा, विजुअलाइज करते हैं बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि ने आत्मा को विजुअलाइज भी किया, लेकिन अगर उसको फील नहीं कर पाए तो कमेंट्री चल रही थी, लेकिन आपको कुछ हो नहीं रहा। और जब नहीं होता है तो थोड़ी देर के बाद मन बाहर भटकना, बाहर की बातों को फील करना चालू करता है, जहां से उसको फीलिंग आ रही है। अब कहां से फीलिंग आती है? तो देह के संबंधों में फीलिंग आती है। तो माम की याद आ जाएंगी कि माँ इतना प्यार करती, देखो वो आज होती थी तो अच्छा लगता था उसको, मैं या माना उसके विषय में यहां कॉमेंट्री चल रही है, और आप क्या फील कर रहे हैं, जहां से आपको स्नेह मिला उसको फील कर रहे हैं। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि आत्मा के सातों गुणों को महसूस करना, विजुअलाइज के साथ साथ बुद्धि ने आत्मा को प्रकाश रूप में देखा, एक ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में देखा, देखा जरूर, लेकिन अगर फील नहीं करेंगे तो बिंदी खिसक जाएगी और उसके बदले देहधारी का स्वरूप सामने आने लगेगा। तो आत्माभिमानी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, देही अभिमानी मतलब क्या? कि देही अभिमानी मतलब ये देह की कर्मेंद्रिय को मैं मालिक बनकर यूज तो कर रही हूं, लेकिन जो आत्माभिमानी बनकर के अगर मैंने सचमुच सातों गुणों को महसूस किया है, उस ऊर्जा को अपने अंदर फील किया है, तो जब मैं देही अभिमानी बनती हूँ तो कर्म करते हुए वो सातों गुणों की ऊर्जा वहां फ्लो होने लगती है। शांति, आनंद, जो कर्म आप करेंगे प्रेम से करेंगे, शांति से करेंगे, आनंद की स्थिति में खुशी से करेंगे, समझदारी से ज्ञान युक्त होकर करेंगे, तो जहां ये ऊर्जा हमारी इंद्रियों के द्वारा उस कर्म में प्रवाहित हो रही है उसको कहा जाता है देही अभिमानी। जैसे दुनिया में कई बार कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है, कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, बहुत कम बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, ये तो जैसे देवता है। तो देवता उसको कहा जिसके मुख से मधुर वचन या मधुरता की ऊर्जा फ्लो हो रही है, उसको लोगों ने देवता कहा। कि देवताएं मिठाई बोलते हैं, देवताएं बातचीत करने में बहुत कम शब्दों का प्रयोग, लेकिन देही अभिमानी माना सातों गुण की ऊर्जा उस कर्म में प्रवाहित हो रही है। जैसे कई बार आपको कोई काम दिया जाता है लेकिन करने खातर जल्दी जल्दी करके पूरा कर दिया, तो उसको देही अभिमानी नहीं कहा जाएगा, उसको देह अभिमान में आपने वो काम पूरा किया। लेकिन देही अभिमानी बन करके जब वो कार्य करते हैं तो इतना शांति से, प्रेम से, खुशी से, समझदारी से, और जब उसमें रह करके आप वो कर्म करेंगे तो उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं होगी, उस कर्म द्वारा आपको खुद को सुख की अनुभूति होगी, वो कर्म करने का भी सुख मिलेगा और वो कर्म आपके जमा के खाते को बढ़ाएगा। वो कर्म में कोई भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी, जो बार बार हम कहते क्या करें, गलती हो गई, माना आपने देह अभिमान में कर्म किया तब गलती हुई। अब अगर आप देही अभिमानी स्थिति में कर्म करते तो आपको रिग्रेट्स नहीं होंगे, पश्चाताप नहीं होगा, हाय मेरे से ये गलती हो गई, हाय मेरे से ये गलती का एहसास नहीं हो सकता है। गलती हुई माना कहीं ना कहीं देह अभिमान में आए इसीलिए गलती हुई, लेकिन अगर देही अभिमानी स्थिति में आप वो कर्म कर रहे थे तो कभी भी उसमें गलती की गुंजाइश नहीं, उस कर्म के द्वारा आप किसी को दुख की फीलिंग नहीं देंगे, खुद भी सुख का अनुभव करेंगे और उस कर्म का सुख दूसरों को भी देंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है और यही बाबा हमें सिखा रहे हैं कि आपके कर्म के माध्यम से दूसरों को भी सुख मिले, और जब उसको सुख की फीलिंग मिलती है तो उसके अंदर से जो सुख की फीलिंग मिली उसको, तो उसके वाइब्रेशन क्या निकलेंगे, थैंक्स। जैसे ही थैंक्स निकला माना वो थैंक्स हमारे लिए दुआ बन गई, वो दुआ का काम करता है। इसीलिए आप जो भी कार्य करो, अंदर से जब बाबा को आप थैंक्स करते हैं तो वो आत्मा जिसके लिए या जिसको उसका सुख मिला वो भी आपको दिल से थैंक्स करता है, और वो थैंक्स मेरे लिए दुआ बने। ऐसी दुआओं को जमा करते जाना है तो मेरा जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। जहां ये फीलिंग नहीं आई, और अगर किसी ने महिमा किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उस समय नहीं नहीं मैंने नहीं किया ऐसे नहीं बोलना। उस समय क्या कहेंगे, बाबा कराने वाला उसने कराया, तो बाबा को समर्पित कर देना। नहीं नहीं मैंने नहीं किया, है ना, ये नहीं नहीं शब्द ये नेगेटिव हो जाता है खुद के लिए भी, ये खुद के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस को जनरेट करता है जो हमारी प्रगति को रोकता है। इसलिए उस समय यही कहो, बाबा कराने वाला उसने कराया। ये निर्माण भाव है, ये देही अभिमानी स्थिति है कि करने के बाद भी जो उसकी महिमा रूपी फल मिला उसको कच्चा स्वीकार न करके उसको बाबा को समर्पित कर दिया, तो बाबा की भी दुआएं मिलेगी, उस आत्मा की तो मिली ही, लेकिन जब मैंने बाबा को समर्पित कर तो बाबा की छत्र छाया आशीर्वाद की जैसे मेरे ऊपर बनने लगती है। तो देही अभिमानी स्थिति से आप बहुत दुआएं जमा कर सकते हो और परमात्मा के भी प्रिय बन सकते हैं, क्योंकि जितना बाबा को समर्पित करते जाएंगे उतना पदम गुणा होकर के बाबा उसका फल आपको महसूस कराएंगे, अपनी पालना महसूस कराएंगे। बहुत अच्छी, अभी हमारी बड़ी बहनों की जब बट्टी हुई उसमें एक बात चर्चा में आई, और चर्चा में यही बात आई कि जो भी संगम युग पर हमें सुख के सुविधा के साधन मिलते हैं ये हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं है, जो हमने अच्छे कर्म किया उसका फल नहीं है, लेकिन जो भी हमें संगम युग में साधन सुविधा या जो भी मिलता है ये बाबा की परवरिश है, बाबा की पालना है। फल तो हमें सत्युग में ही मिलेगा, जो अच्छा कर्म करेंगे उसका फल यहाँ नहीं मिलेगा, उसका फल हमारा जमा होकर सत्युग में ही मिलना है प्रारब्ध के रूप में। लेकिन यहाँ जो कुछ भी मिल रहा है ये बाबा की परवरिश है, बाबा की पालना है। तो जितना हम अपने अच्छे कर्म को, वो महिमा को, ये भी बातें, जो भी बातें कोई करता और बाबा को अंदर से समर्पित कर देते हैं, उतना बाबा की परवरिश खुद में अधिक से अधिक महसूस करेंगे। जो खुद यहाँ स्वीकार कर लेता है, बाबा को समर्पित नहीं करता है, उसको बाबा की परवरिश से वंचित हो जाता। जब उसने बाबा को समर्पित ही नहीं किया तो उसको वो पालना का अनुभव बाबा से नहीं होता है। लेकिन जो समर्पित करता है दिल से, उसको बाबा की पालना का अनुभव होने लगता है कि बाबा कितनी सुंदर परवरिश मेरी करते हैं। उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति में वो कर्म किया, तब वो परवरिश का अनुभव कर पाए, है ना। दूसरी बात बहुत सुंदर, मुझे ये बात एक बाहर से भी सीखने को मिली कि एक बार हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे, और वो कार्यक्रम था कि लता मंगेशकर का 75 साल गाने के जो हुए थे, 50 साल या 75वां साल था जो गाने के उसके हुए थे, तो उस समय उसने बड़ा फंक्शन रखा था और उसमें काफी लोगों को बुलाया था, तो ब्रह्मा कुमारी उसको भी बुलाया था, हर संस्था से लोगों को बुलाया था, तो ब्रह्मा कुमारी उसको भी बुलाया था, तो उस समय हमें जाने का मौका मिला था। तो उसमें उसने स्पीच दिया, और स्पीच दे करके यही कहा कि जब मैंने पहली बार गाना गाया था उसका अनुभव क्या था वो सुना रही थी। तो उसने कहा जब मैंने पहली बार गाना गाया था तो उस समय के उस जमाने की कोई सिंगर होंगी, बहुत बड़ी सिंगर होगी उस समय, मैं नाम तो भूल गई उसने कौन सा नाम बताया, तो वो सिंगर वहां हाजिर थी स्टूडियो में जब वो गाना गा रही थी। बहुत छोटी एज में उसने शुरू किया था, 12-13 साल की एज में शायद शुरू किया था। तो उसने कहा जब मैंने पहला गाना गाया अपना तो वो बड़ी सिंगर जो थी वो वहां पर हाजिर थी स्टूडियो में, तो मैंने जैसे गाना पूरा किया तो वो सिंगर आकर के मेरी पीठ थपथपा कर कहा बेटी बहुत अच्छा आवाज है तेरा, है ना, जैसे उसने कहा बहुत अच्छा गाया आपने, तो लता मंगेशकर के मुख से निकल गया कि नहीं नहीं मैं कहा, मना उसके सामने वो तो इतनी बड़ी सिंगर है तो उसके सामने मैं कहा, ऐसा वो बोलने गई कि नहीं नहीं मैं कहा आप तो, आपके सामने मैं कहा ऐसे बोली। तो उस सिंगर ने उसको कहा कि बेटी जब भी कोई तेरे आवाज की तारीफ करे तो नहीं नहीं शब्द नहीं कहना, क्योंकि नहीं नहीं कहने से हम इतनी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते। ये तो मैं बाद में एनालाइज किया उस बात को, उसने नहीं कहा, लेकिन नहीं नहीं कहने से हम इतनी नेगेटिव ऊर्जा स्वयं के लिए उत्पन्न करते हैं कि नहीं नहीं कहना माना हम अपने आप को श्रापित कर देते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा से, और इसीलिए हमारा आगे बढ़ना रुकावट आ जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी मेरे लिए रुकावट बनती है। तब उसने कहा कि वो सिंगर ने उसको कहा लता मंगेशकर जी को कि जब भी कोई आपके गाने की तारीफ करे तो ये कहना कि अल्लाह की मेहरबानी है। वो पाकिस्तानी सिंगर थी जो उसके सामने थी, वो तो कहा हमेशा ये कहना कि अल्लाह की मेहरबानी है। मना उसको मैंने भी स्वीकार नहीं किया, ना भी नहीं किया, लेकिन तुरंत अल्लाह को या परमात्मा को उसको समर्पित कर दिया। तो जब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर का वरदानी हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हैं। वो अपने जीवन का आगे बढ़ने का रहस्य बता रही थी कि उसके बाद से मैंने कभी भी नई नई शब्द नहीं कहा, जब भी मेरे गाने की कोई तारीफ करता था तो मैं हमेशा कहती थी अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी मेहरबानी है। इसीलिए आज लता मंगेशकर गाने में इतना आगे बढ़ गई, नंबर वन बन गई सारे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसने पॉजिटिव ऊर्जा को जमा किया और ईश्वर को जब समर्पित किया तो ईश्वर की भी मेहरबानी और महसूस करने लगी अपने जीवन। ठीक इसी तरह आप इस जीवन में हैं, नेचुरल है आपके सामने भी चांस आएंगे कि आज वहां चले जाओ भाषण करके आओ, और उस समय अक्सर कन्याएं क्या कहती नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। अब नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा माना हमने अपने लिए अपनी क्षमता के लिए नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर ली, और जैसे ही वो क्रिएट किया मैंने नहीं किया तो बहन जी कहेंगे अच्छा ठीक है ये चली जाएंगे, तो दूसरी बहन को चांस मिल गया। तो जो भगवान मुझे चांस दे करके मेरा भाग्य बनाना चाहते थे मैंने मना किया उसको चांस मिल गया तो भाग्य उसके भाग्य में जमा हो गया। तो आज के बाद कभी भी जो देही अभिमानी होगा वो कभी भी कोई बात के लिए ना नहीं करेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा मुरली के अंदर ये बात आती है, ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। नास्तिक क्यों कहा, नास्तिक माना जो ईश्वर क्या देना चाहते हैं उसको समझ नहीं पाया, ईश्वर कौन सा भाग्य बनाना चाहते हैं उसको समझ नहीं पाया, इसलिए नास्तिक है ना। अगर आप में क्षमता नहीं है फिर भी आपने हां कर दिया, हां जी करने वाला आस्तिक जो बाबा कहते हैं, अगर आप में क्षमता नहीं भी है तो क्या उसको मालूम नहीं थी क्या, और बहन जी को निमित्त बना करके आपको वो सेवा का चांस मिला, देने वाला तो वही है ना, उसको मालूम नहीं था क्या क्या आपके पास क्षमता है या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने हाँ किया, वो क्षमता न होने पर बाबा वो क्षमता आप में भर देगा, भर देगा। ये बाबा की पालना जिसने संगम युग में अनुभव किया, उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। इसलिए हाँ करना माना जैसे सिमसिम दरवाजा खुल जा, सिमसिम दरवाजा खुल जा, अपने भाग्य का दरवाजा एक के बाद एक खुलता जाता है, खुलता जाता है, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और हर बार जब कोई कहता है बहुत अच्छा बोला आपने, तुरंत बाबा याद आना चाहिए, बुलवाने वाला बाबा है, मेरे पास तो वो क्षमता नहीं थी, कराने वाला बाबा है। तो मैंने तुरंत जैसे ही बाबा को समर्पित कर दिया और उसको भी कहा कि बाबा को याद, बाबा ने करवाया, उसको भी बाबा की याद दिला दी। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जहां बाप होगा ना वहां कोई पाप नहीं होगा। बाप गया तो माना पाप हुआ, माना कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी, पाप माना मिस्टेक्स जरूर होगी, और वो मिस्टेक्स हमें कहीं ना कहीं भारी बना देती है, और वो भारीपन कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को बनने नहीं देता है। इसीलिए जितना बाबा को समर्पित करते जाओ उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे, हल्के रहेंगे, कभी कोई बात की फीलिंग नहीं आएंगी। किसी ने अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो भी बाबा को याद करो कि बाबा मैंने तो आपको देख करके किया था, अब उसको पसंद नहीं आया तो वो उसका प्रॉब्लम, उसको बाबा की याद नहीं है, है कि नहीं। लेकिन जैसे आपने बाबा को समर्पित किया माना आप तो आगे बढ़ने लगे, ये गारंटी है, ये गारंटी, ये सीक्रेट है। ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस की बात जो समझ लेता है जीवन में, वो कभी जीवन में पीछे नहीं कदम बढ़ाता, वो हमेशा जीवन में कदम आगे बढ़ाते हुए सक्सेस की ओर ही आगे बढ़ता है। कभी भी ये हमारा अनुभव है। इसीलिए कहा कि बहन जी कह रही थी कि प्लस टू करके इतना आगे बढ़े, कैसे बढ़े? हमेशा अपने लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखना, और जब भी कोई अच्छी बात कहे बाबा को समर्पित कर देना, बाबा आपने करवाया। अगर आप उसके सामने नहीं भी बोल सकते लेकिन उस वक्त बाबा को इमर्ज करके, बाबा ये मेरी महिमा नहीं आपकी महिमा कर रहा है, बोले वो नहीं जान रहा है। जब मनी मन ये इस तरह की रूहान बाबा के साथ करेंगे, आप वार्तालाप करेंगे, तो आपको हर वक्त बाबा की इतनी श्रेष्ठ पालना का अनुभव होने लगेगा जो आप महसूस करेंगे जैसे आप आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए सातों गुण जो आत्म अभिमानी बन करके हम विकसित करते हैं, उसी को प्रैक्टिकल कर्म में जब आते हैं, कर्मेंद्रिय को यूज करते हुए वो सातों गुणों की ऊर्जा को अंदर में समाहित कर दो, तो वो आपका कर्म इतना श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन करके जब कर्म करेंगे तो बाप का शो कर सकेंगे, उसी से बाप की प्रत्यक्षता भी सहज हो जाएगी। इसीलिए उसको फील करना, तब हल्कापन महसूस होगा और बाबा का शो करेंगे। इसलिए कोई भी कार्य को ये मत समझना कि भाई ये कार्य में क्या बाबा की प्रत्यक्षता होगी, नहीं। अगर आपको झाड़ू पोछा भी करना पड़ा ना सेंटर पर, तो भी आप प्रेम से करो, प्रेम से करेंगे, शांति से करेंगे, खुशी से करेंगे, तो बाबा आपके ऊपर आफरीन जाएगा। पहली सेवा तो यही आएगी, पहली सेवा यही आएगी, आपका देह अभिमान कितना है ये देखने के लिए बाबा के घर में कहेंगे झाड़ू पोछा मारो। और जिसने अपने देह अभिमान को वहां चैलेंज किया, तोड़ा और प्यार से किया, उसको बाबा किस तरह से आगे बढ़ाता है आप खुद महसूस करेंगे, खुद महसूस करेंगे। मैंने खुद अपने जीवन के अंदर ये महसूस किया है, अनुभव किया है, हर प्रकार की सेवा करते हुए जब खुशी से प्रेम से आप करते जाएंगे तो देखो बाबा कैसे आपको आगे बढ़ाता जाएगा। लेकिन ये पहली टेस्ट जरूर आएगी देह अभिमान को तोड़ने के लिए, ये झाड़ू पोछा करो। डरेंगे तो नहीं कन्याएं? डरेंगी? कई कन्याएं ये सोचती हम झाड़ू पोछा करने के लिए थोड़ी है। अरे अगर आप शादी करके जाएंगे तो आप अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगी क्या? पहले दिन से काम वाली मिल जाएंगी क्या आपको? नहीं मिली तो झाड़ू पोछा खुद के घर में सफाई के लिए करना पड़ेगा कि नहीं करना? तो ये तो बाबा का घर है। तो पहली टेस्ट यही आएगी हर एक के सामने कि देह अभिमान सचमुच तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, भगवान भी देखता है। और इसीलिए किसी न किसी बहन के निमित्त बनाकर वो आपको कहेंगी झाड़ू पोछा करो। आरा, कितना अपना घर समझा है, बाबा का घर मेरा घर है ये कितना समझा है। जब ये समझ में आ जाएगा कि बाबा का घर मेरा घर है, यही मेरा घर है, और आपने इतना प्यार से किया सफाई, ऐसे नहीं कर दिया ठीक है कर दिया आधा कचरा छूट गया तो भी कोई हर्जा नहीं, कुछ कौन देखने वाला है क्या मालूम पड़ेगा, ये नहीं। जो काम करो बहुत प्यार, आपको बर्तन मांजने की सेवा मिले बहुत प्यार से करो, इतना अच्छे से सफाई से करो, क्योंकि हर चीज में बाबा ने इसीलिए कहा एक है भाषण पर मार्क्स मिलना, एक है कर्मणा सेवा पर मार्क्स मिला, दोनों को बराबर मार्क्स मिलते हैं। तो जो अपना जमा का खाता बढ़ाना है तो देही अभिमानी बन करके अगर मैंने बर्तन भी साफ किया उसमें जितना मार्क्स मिलेगा उतना शायद भाषण करके आकर के जो बहन है उसको दे अभिमान आ गया तो उसको जीरो मिला और आपको 100%। इसीलिए देही अभिमानी बन करके हर कर्म करने में जो राज है उस राज को आप समझो। ये भगवान की पालना का तरीका ही निराला है, यही आगे बढ़ने का बहुत सुंदर आधार है। मेरे सामने भी जब झाड़ू पोछा की सेवा आई, कहा झाड़ू पोछा लगाओ, मैं क्या सोचती थी पता है? मैंने झाड़ू पोछा जब लगाना कि मैं अगर भाषण करती थी ना तो मेरी एक ही इंद्रिय पावन बनती थी, लेकिन मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ ना तो मेरे दधीची ऋषि की तरह मेरी हर इंद्रिय पावन बन रही, हर इंद्रिय, मेरे को इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी, और इतना खुशी से मैं इतना अच्छी तरह से साफ करती थी। तो बहन देखती थी झाड़ू पोछा भी इतना प्यार से कर रही है, और जबकि मैंने घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं किया, जब घर में नहीं किया लेकिन सेंटर पर जब पहली सेवा मुझे कहा झाड़ू पोछा, तो मैं सोचती थी अगर मैं भाषण करती थी ना तो मेरी एक ही इंद्रिया पावन बनती थी, लेकिन मेरी दधीची ऋषि की तरह मेरी हड्डी हड्डी पावन बन रही तो मुझे इतनी खुशी होने लगी थी कि मैं ही दधीची ऋषि हूँ, मेरा ही गायन है ये, तो कि हड्डी हड्डी मैंने यज्ञ में स्वाहा किया। जब इतनी खुशी से जब करने लगी तो बाबा ने उसके बाद, मैं समझती हूँ मैं 2 महीना झाड़ू पोछा की सेवा किया होगा, उसके बाद जिंदगी में दोबारा झाड़ू पोछा नहीं मिला मुझे, इतना प्यार से किया था तो मिला ही नहीं, दोबारा करने का चांस ही नहीं मिला, है ना? और फिर भी अगर करना पड़ता है तो मैं आज भी उतना ही प्यार से करने के लिए उसको तैयार होती हूँ। अपने कमरे की सफाई, अपने उसकी सफाई मैं इतना ही प्यार से करती हूँ कि मेरा बाबा का घर मेरा घर है, है ना, उसको साफ रखना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए कहा कि आप अगर दुनिया में जाते तो वहां भी करना पड़ता, बाबा के घर में अगर किया तो ये तो भाग्य जमा होने वाली बात है, तो उसको कम क्यों समझते हैं कि ये क्या इसके लिए थोड़ी हूँ मैं, उसके लिए थोड़ी हूँ। अरे इसमें जितने मार्क्स आप जमा करेंगे ना उतना भाषण करने में नहीं कर सकेंगे, इतना याद रखना। इसीलिए कहा ये सेवा बहुत ऊंची सेवा, आपको बहुत आगे बढ़ाने वाली सेवा है, ये मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव किया है। ठीक है? ठीक है, तो ये है देही अभिमानी। अच्छा, ओम शांति।